बन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान।
स्टूडेंट लाइफ किसको कहा जाता है? हमेशा डायरी पेन साथ में, ऐसे मुरली सुनने कभी नहीं आई। और दीदी की सीट थी ये, यहाँ पर बैठते थे सबसे आगे, नंबर वन स्टूडेंट। बाद में सोफा एक आया, यहाँ जहाँ माता जी बैठी इधर एक सोफा था सिर्फ छोटा सा। जब कुछ तबीयत खराब हुई, बीमारी आई, तो दीदी ने एक सोफा दीदी के लिए बना, ये कुछ नहीं था सोफे, सभी यहीं बैठते थे सामने सामने। दीदी ने मुझे शुरू शुरू से, पहले से, दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता, परखने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, बहुत देखते ही परख लेती थी कि बाबा का वारिस बच्चा कौन है और कैसे उसको हैंडल करना है, वो भी बहुत अच्छा आता था। चाहे जैसे भी आजकल दादी जानकी का विशेष पाठ चलता है, कोई भी आ जाए को हर प्रकार से ज्ञान खजाने से भरपूर करें, स्थूल में सौगातें दे करके, टोलियां खिला करके, मतलब हर प्रकार की पालना का संस्कार, दातापन का संस्कार। लेकिन दीदी के साथ हमारा जो संबंध रहा, टीचर और स्टूडेंट का रहा, जैसे टीचर कोई पढ़ाता है, ऐसे दीदी हमें शुरू से सिंधी सिखाती थी, क्योंकि हमने शुरू शुरू में मधुबन के अंदर टाइप सीखी। और जब टाइप सीखना शुरू किया तो दीदी ने कहा, टाइप तभी सफल होगी जब सिंधी जानते हो, अगर सिंधी नहीं आती है तो टाइप क्या करोगे, क्योंकि सब क्लासेज, सब पत्र, सब बाबा की मुरलियां सिंधी में हैं, उसको ट्रांसलेशन करना और ट्रांसलेशन करके टाइप करना है, इसलिए तुम्हें सिंधी सीखनी पड़ेगी। तो उस समय सवेरे सवेरे का योग केवल सोमवार सोमवार होता था, 4 बजे का उठ जाते थे सभी, लेकिन कंपलसरी योग नहीं था। 5 बजे सभी तैयार होकर के आते थे, जल्दी क्लास मुरली का शुरू होता था, उसके पहले योग होता था, तो सवेरे उठ करके हम सिंधी सीखते थे, 10-12 दिन में सिंधी सीख गए। दादा ने, विश्वरतन दादा ने पहले का खा गा लिखना सिखाया, और फिर दीदी अपनी डायरी देती थी मुझे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिखती थी, वो प्रश्न लिख करके मुझे कहती थी, तुम पढ़ो इसको और पढ़ करके जो तुमको अच्छा लगे वो टाइप करके ले आओ। दीदी का एक नियम बना हुआ था, चाहे जितनी पोस्ट आए बाबा के बाद, दीदी ने पोस्ट की जवाबदारी बहुत अच्छी तरह से संभाली, 10 बजे तक कुछ भी नहीं करना है, क्लास के बाद तुरंत सभी बैठ जाते थे और जितनी पोस्ट होती थी उस सब का उत्तर दीदी अपने साथ बिठा करके लिखवाती थी, खुद भी लिखती थी और हम सबको बिठाती थी, और हमें खास कहती थी, तुम प्रश्न उत्तर निकाल के टाइप करके ले आओ तो ये माल खजाना सबको भेजेंगे, सब सेंटर से भेजेंगे। तो ऐसे जो आज मुरलियों के अंदर आप सभी प्रश्न उत्तर सुनते हो, सार सुनते हो, दीदी ने उस समय मुझे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सिखाया। हर समय कोई भी बात होती थी तो दीदी के साथ साथ रहने का, पत्र का उत्तर देने का, प्रश्न उत्तर लिखने का, टाइप करने का मुझे बाबा के घर में अवसर मिला और दीदी की विशेष छत्र छाया थी जी। पहले कुछ नहीं था, बाद में शुरू हुआ। और खास करके नाइट क्लास में दीदी सबसे पहले यहाँ खड़ी होती थी, बोलती थी बेल बज गया, घंटी बजती थी क्लास की ना, तो घंटी स्थूल में बजे न बजे लेकिन दीदी आकर के सबसे पहले बैठ जाती थी नाइट क्लास में। और हमें एक ड्यूटी मिली थी कि बाबा आते थे तो बाबा जो पर्सनल पार्टियों से बात करते थे, एक एक से मिलते थे पर्सनल, तो मैं सारी रात बैठ करके जो बाबा किसी को भी पर्सनल बोलते थे वो सब मैं नोट लेता था। अभी तो टेप रिकॉर्ड आ गए, रिकॉर्डिंग हो जाती है, टाइप साथ साथ हो जाती है, कंप्यूटर युग हो गया, उस समय सब हाथ से लिखते थे। तो जो भी रात भर बाबा बोलते थे वो मैं सब हाथ से लिखता था। फिर बाद में जब दीदी आती थी तो बोलती थी ये क्लास में सुनाओ सबको जो लिखा है आज। वो क्लास कई कई दिन चलते थे क्योंकि बाबा तो रात भर बोलता था, मैं रात भर लिखता था, डायरी भर जाती थी। तो एक दिन नहीं पूरा हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन वो क्लास चलता रहता था। रात्रि क्लास में विशेष करके बाबा की पार्टियों की मुलाकातें और जो सेवा समाचार होते थे, ऐसी क्लासेज नहीं होती थी जैसी अभी होती हैं, भाई भाई बहने कराते हैं। जो भारत के अंदर या विदेश की कोई ऐसी विशेष सेवाएं हों वो यहाँ क्लास में सेवा समाचार सुनाए जाते थे और एक चिटचैट का जैसे माहौल, सभी को आना है, हाजिरी जरूरी थी, सभी आते थे और सभी क्लास में रिफ्रेश होकर के गुड नाइट करके बाबा से मीठी मीठी रूह ध्यान करके फिर जाते थे। तो दीदी ने हम सब की बहुत अच्छी पालना की और अभी भी कल हम बाबा की रूह ध्यान दीदी की सुन रहे थे, आज संदेश सुना ना सबने, याद है एक बहुत अंदर का दीदी के अंदर उमंग था, बस अभी घर जाना है, घर जाना है, जल्दी करो जल्दी करो, सब सेवाएं जल्दी जल्दी करो, कोई चीज में भी सुस्ती नहीं, हर बात एक्यूरेट। और अगर कोई बात किसी की कोई ने सुना दी कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया तो सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया, नहीं सुन लिया, सुनते ही तुरंत एक्शन लेना। क्या एक्शन लेती थी दीदी का एक शब्द था सड करो, बुलाओ, सिंधी में कहते सड करो, तो उसी समय तुरंत बुलाती थी दोनों पार्टियों को, ऐसे नहीं एक ने कह दिया कुछ बोल दिया उसने ऐसा किया उसने ऐसे खाया उसने ऐसे बोला, नहीं सुनी सुनाई नहीं, उसको बुलाओ पहले और उसी समय आमने सामने करा देना क्या हुआ कैसे हुआ, तुरंत हल्का कर देना। तो एक बहुत अच्छी पालना और बहुत अच्छा एक अलर्ट सभी रहते थे कि अगर कुछ भी थोड़ा भी कुछ हम बोलेंगे करेंगे तो तुरंत रिपोर्ट जाएगी और बुलावा हो जाएगा। और अगर किसी कारण से कोई ने नहीं योग में आया क्लास में नहीं आया, क्लास परिवार थोड़ा था इसलिए एक एक पर नजर रहती थी आज किसने मिस किया, फिर दिन में कभी चलते फिरते अगर सामने दिखाई दिया तो ऐसे प्यार से बुला लेगी, तबीयत ठीक है वो समझ जाएगा क्यों दीदी पूछ रही है, और कुछ नहीं बोले क्लास में क्यों आए नहीं आए ये नहीं पूछेगी, तबीयत तो ठीक है कोई तकलीफ है क्या, दीदी कुछ कुछ बोला दीदी की अच्छा तुमने आज क्लास मिस किया, मुरली मिस किया, नाश्ता तो किया ना, नाश्ता किया लेकिन मुरली मिस कर दिया। तो इतना ध्यान एक एक पर रखना। और जब अमृत वेले का योग कंपल्सरी हो गया सुबह सुबह का तो दीदी देखती थी कि अमृत वेला योग करके कोई सो तो नहीं गया, क्योंकि सो जाते हैं जाकर के ना, योग किया और योग के बाद जाके सो गए एक घंटा आधा घंटा जब तक स्नान किया। तो दीदी क्या करती थी, एक दिन की बात हंसी की सुनाता हूँ। हम लोग ये लाइट हाउस है ना इधर रहते थे सभी पांच पांच एक एक कमरे में, तो सुबह सुबह दीदी दादी दोनों ही जैसे घूंघट निकाल के माताएं होती ना ऐसे ऐसे ओढ़ लिया ऊपर सिर से, और पौने पांच बजे जब योग पूरा हो गया तो चढ़ गई ऊपर सीढ़ी पर। तो हम लोग जो जगे हुए थे कुल्ला वगैरह कर रहे थे, अरे माता जी इधर क्यों आई हो, इधर भाई लोग रहते हैं, माता जी इधर क्यों आई हो, यहां से जाओ उतर जाओ, ऐसे किया जोर से। हम लोग समझ गए दादी दीदी दोनों आई हैं चक्कर लगाने के लिए, तो बस ऐसे सीटी मारी, धीरे से इशारा किया और फिर सब कमरों में चक्कर लगाया, कौन कौन सोया हुआ, एक एक को कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, किसी को बोले भी नहीं दिया, बोला भी नहीं, और एक एक कमरे में जा करके कौन कौन सोया है चेक करके आ गई। तो ऐसे जब ध्यान किसी का जाता है तो पालना की कैसी अच्छी विधि थी, कोई को कुछ कहना नहीं, लेकिन एक अंदर अपने आप लोगों को लगेगा भाई कभी भी चेकिंग हो सकती है, मिस नहीं करना है, योग के बाद सोना नहीं है, अलर्ट रहना है, क्लास में टाइम पर आना। तो इस प्रकार से एक छोटा परिवार भी था और पालना की एक बहुत अच्छी विधि थी, खेल खेल में बहुत को सिखा देते थे हंसते हंसते। अभी तो बहुत बेहद में चला गया है, कितने लोगों को पूछा जाए पूछ भी नहीं सकते हैं। मधुबन में भी कई लोग हैं जो सोए रहते हैं योग के समय, क्लास के समय नहीं क्लास करते हैं, लेकिन ये अपनी समझ और अपनी उन्नति का एक बहुत अच्छा साधन है। अगर हम कहते हैं हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, कम से कम अपनी उन्नति के लिए अमृत वेला और बाबा की मुरली। रात्रि क्लास भी हमें बहुत कुछ प्रेरणाएं देता है, लेकिन ये दो चीजें अगर जिसकी पक्की हैं, उसमें अलबेला नहीं है, सुस्त नहीं है, तो ये एक अच्छा भोजन, अच्छी खुराक, अच्छी शक्तियां बाबा से लेकर के अपने जीवन को बहुत निर्संकल्प और निर्विघ्न बना सकता है। बहुत सारे ऐसे विघ्न आते हैं, ऐसी बातें आती हैं, बाबा की उसी दिन की मुरली में उसका उत्तर होता है। अगर कोई ध्यान से पढ़े और सुने तो बाबा की वो मुरली ऐसी कोई ना कोई बात उसमें निकल आती है, चाहे वरदान में है, स्लोगन में है, पॉइंट्स में है, बहुत अच्छा हल होता है, और उस पर अगर किसी ने चिंतन किया है तो उसको सहज पार कर सकता है। तो आज हम सभी ने बाबा की मुरली में अपनी खामियों को निकालने की बहुत अच्छी विधि सुनी, ध्यान गया ना आज की मुरली पर कि अपना हर एक रजिस्टर रखो, कैरेक्टर का रजिस्टर। तो कल जब दादी जी ने मुरली पढ़ी थी तो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग चली थी, आज सवेरे दादी जी को भूल गया, दूसरी बातों में गुणों के चार्ट पर ध्यान चला गया, लेकिन कल जब मुझे बुलाया था मुरली पढ़ने के बाद, तो एक अच्छा चिंतन कैसे करेक्टर्स का चार्ट हर एक रखे। दादी कुछ शब्दों में मुझे बता रही थी, ऐसा एक चार्ट बनाओ जो अभी से राखी तक सभी लिखें, और उस चार्ट में 7 बातें हैं, 7 दिन के लिए एक एक बात रोज चेक करें जिससे ऊंचा कैरेक्टर बन जाए। रजिस्टर ऐसा रखें जिससे हरेक का कैरेक्टर बड़ा अच्छे से अच्छा बन जाए। वैसे तो बाबा ने आज का जो डल स्टूडेंट है वो लिखते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उससे हमारा ध्यान हरेक अपने आप पर जाता है कि मेरे अंदर कितनी विशेषताएं आई हैं, कितनी बाबा की शिक्षाओं को मैंने अपने जीवन में उतारा है। तो 7 बातें जो हम सब के लिए कॉमन ही है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 7 शिक्षाओं के रूप में फिर मैंने आज उसका चार्ट बनाया, कल दादी ने कहा था, तो आज जो चार्ट बनाया कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे हर एक दिन का एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले जो आज बाबा की मुरली में था, सिविलाइज्ड आत्मा कहाँ तक बनी है, पावन कहाँ तक बनी है, काम जीत और कामना जीत कहाँ तक बनी है, ये बाबा की बहुत ऊंची शिक्षा हम बच्चों को शुरू से मिलती आ रही है, क्योंकि आत्मा को सत्व प्रधान बनना है, सजाओं से छूटना है, उसके लिए संपूर्ण पवित्रता जीवन में कहाँ तक है, मन वचन कर्म में, दृष्टि और वृत्ति में, जो कभी कभी व्यर्थ के क्रिमिनल ख्याल आ जाते हैं वो समाप्त हो जाएं, पहले दिन सोमवार के दिन इसकी चेकिंग हर एक करे, सुबह सुबह उठ करके एक संकल्प ले कि बाबा मैं आप समान आप जैसा संपूर्ण पावन बन करके रहूंगा। और फिर मेरे अंदर अभी तक कौन सा ऐसा संस्कार है या कहां तक इस परसेंटेज में हम पास हैं प्योरिटी की, काम जीत की, मन से, वचन से, कर्म से, स्वप्न संकल्प दृष्टि और वृत्ति से, तो उसका एक एक दिन का चार्ट एक ही विषय पर रखा जाए और सुबह से शाम तक उसको चेक किया जाए, रात को उसकी परसेंटेज लिखें। पहले संकल्प लें आज सारे दिन में हमको इस बात पर ध्यान रखना है, मनन चिंतन करें और अपनी चेकिंग करके फिर रात को उसको लिखें। तो एक विषय ये था, क्योंकि कैरेक्टर इसी से ऊंचा बनेगा। आज जो हमारी दुनिया में कैरेक्टरलेस बन चुके, चरित्रहीन समाज बन गया है, उसका कारण यही है, मूल काम विकार, अनेक अत्याचार पापाचार इसी के रूप में हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं। एक बहुत मूल विकार की एक जड़ है जो सारी दुनिया को पतित बना दिया। बाबा हम बच्चों को पावन बना रहा है, सिविलाइज्ड बना रहा है, पावन दुनिया बना रहा है, और बिना आत्मा पावन बने वापस नहीं जाएगी, सजाएं खानी पड़ेंगी। और ऊंच पद का भी आधार यही है, इसलिए पहली सब्जेक्ट इसको हम चेक करें। और दूसरा जो बाबा कहता है कि आत्मा प्रेम स्वरूप है, मास्टर प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, मैं आत्मा कहां तक, दूसरे दिन एक चेकिंग है, प्रेम स्वरूप कहां तक बनी हूं, मास्टर प्रेम का सागर कहां तक बनी हूं, जिसको बाबा कहता मैं प्रेम से भरपूर गंगा कहां तक बनी हूं, क्रोध अग्नि ईर्ष्या द्वेष जलन चिड़चिड़ापन आवेश बहुत से उसके बाल बच्चे हैं, वो क्रोध कहां तक समाप्त हुआ, आवेग आवेश समाप्त हुआ है या अभी तक भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, बहुत से उसके रूप हैं। तो दूसरे दिन की चेकिंग है कि मैं मास्टर प्रेम सागर प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, और उसके साथ साथ ये चेकिंग है कि मेरी इंद्रियां मेरे अंदर से ये क्रोध विकार कहां तक समाप्त हुआ है, कितना इस पर हमने जीत प्राप्त की है। तीसरे दिन जो आज के वरदान में था, अनासक्त वृत्ति, लोभ पर विजय, निर्लोभी, कोई भी पदार्थ देख करके बुद्धि में ये ना आए कि ये मुझे मिल जाए मैं इसको खाऊं, या हवस जिसको बाबा कहता लालच, चीजों को इकट्ठा कर लेना, इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, खींचती हैं चीजें वस्तुएं पदार्थ, इस पर जीत कहां तक है, प्रकृति जीत जिसको बाबा ने कहा। ऐसी अनासक्त वृत्ति है मेरी, वृत्ति अनासक्त निर्लोभी कहां तक बनी है, ये बाबा की शिक्षा है। तो वो अपनी चेकिंग करनी है हरेक को, उसका चार्ट सारे दिन में चेक करो। फिर चौथा दिन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जो बाबा हमेशा कहता है एक बाबा दूसरा न कोई, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, किसी में भी अटैचमेंट न हो, सब मरे पड़े हैं, कोई मेरा नहीं, तो वो मेरापन समाप्त हो जाए, लगाव समाप्त हो जाए, मोह नष्ट हो जाए। इसको हमने कहां तक नष्ट किया है, देह से संबंधों से कहां तक हम नष्ट मोहा बने हैं, और एक बाबा की स्मृति में कहां तक रहते हैं, एक बाबा के सिवाय दूसरे में कहीं बुद्धि लटकी अटकी तो नहीं है, इसकी चेकिंग। फिर पांचवें दिन सरल चित नेचर, नम्र चित नेचर, निरहंकारी नेचर, क्योंकि बहुत सारा अहंकार मैंपन के रूप में वार करता है, बहुत सरल चित नेचर बन जाए, जो बाबा ने इस बार संदेश में पिछले संदेश में कहा है सरल शीतल स्वभाव बन जाए हमारा, और उसमें अहंकार ही विघ्न रूप है। जरा भी कोई भी प्रकार का अहंकार होता है, मैंने अच्छी सेवा की उसका भी अहंकार आ गया, मेरा अच्छा योग है इसका भी अहंकार आ गया, मैं अच्छी सर्विस ज्ञान सुना सकता हूँ उसका भी अहंकार आ गया, मैं धन से तन से मन से सहयोग दे रहा हूँ उसका भी अहंकार आ गया, उसका बहुत सूक्ष्म रूप है। उसको चेक करें कि मैंपन कहाँ तक समाप्त हुआ है, अहंकार कहाँ तक किसको हमने खत्म किया है। क्योंकि कई बार योगी बनने के बाद भी अहंकार नहीं छोड़ता, इसलिए बाबा ने जो लास्ट मंत्र दिया है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वैसे निर्विकारी जब बाबा कहता है तो निर्विकारी स्थिति में सब विकार है, ऐसा नहीं है कि केवल एक पवित्रता की बात है। जब निर्विकारी कहा माना पांचों विकारों पर विजय। लेकिन निर्विकारी बनने वाली आत्माएं भी कभी कभी अहंकार में आ जाती है, मैं निर्विकारी हूं, बहुत सूक्ष्म है वो अहंकार, या मैं बहुत समझ गया, मैं बहुत ज्ञानी बन गया, मुझे बहुत कुछ आ गया, सीखने की भावना खत्म हो जाती है, क्लास की भावना खत्म, योग की भावना, मैं अच्छा योग है मेरा, मैं तो चलते फिरते योग करता हूँ, मेरे साथ ही बाबा रहता है, क्या बैठ के करना, क्या किसी का क्लास करना, क्या क्लास कराएंगे, वही तो बाबा की बातें हैं, मुझे सब पता है, क्या है ये, अभी तो अहंकार हुआ ना। तो अहंकार जड़ से समाप्त हो उसके लिए बहुत मेहनत की बात है, नम्रचित आत्मा बन जाए, सरल चित बन जाए। पांचवें दिन की चेकिंग है, कहां तक इसको हमने समाप्त किया है, नम्रता कहां तक धारण की, निरहंकारिता कहां तक हमारे जीवन में आई है। फिर छठा एक बहुत ब्राह्मणों का महान शत्रु है, कौन सा, सुस्ती आलस। योग में बैठते हैं तो भी सो जाते हैं, आके नींद करते हैं, उबासी लेते हैं, और बाबा के क्लास में मुरली के समय भी अगर कोई उदासी उबासी में बैठा हो तो बाबा कहता था इसको क्लास से बाहर कर दो, बहुत ध्यान बाबा का रहता था। बच्चे ये सुस्ती बहुत बड़ा विकार है, आलस्य बहुत बड़ा विकार है, इसलिए छठी एक धारणा ऐसे ली, मैं एवर रेडी और अलर्ट कहां तक बना, क्योंकि एवर रेडी बाबा कहते ना हर बात में एवर रेडी, चाहे सेवा है चाहे योग का समय है चाहे क्लास का दिनचर्या में भी एवर रेडी, समय पर सब कुछ निश्चित, आलस्य नहीं करना है किसी चीज में, नहीं तो हमारा अच्छे से अच्छा भाग्य जो बन रहा है उसमें हम पीछे रह जाएंगे। तो उस आलस्य को मैंने कहां तक समाप्त किया है, 4 बजे का योग का समय है, आलस्य आ जाए चलो 5 मिनट और अभी घड़ी में पड़ा हुआ है सो लेते हैं, फिर क्या होगा, फिर 5 बज जाता है, 4 बजे के बजाय 5 मिनट अगर कोई सो गया 4 बजे के रिकॉर्ड के समय तो 5 बजेगा सीधा ही, पता ही नहीं चलेगा, तो इसको क्या कहेंगे, आलस्य हुआ ना। ऐसा आलस्य आता है कि नहीं आता है, झटके से रजाई फेंक दो, झटके से उठ जाओ, एकदम से खड़े हो जाओ, आलस्य भाग जाएगा, फिर उसके बाद नींद नहीं आएगी। लेकिन जो धीरे धीरे हाँ देखेंगे अभी तो गीत ही बज रहा है अभी तो चले जाएंगे, तो फिर आलस्य रूपी माया वार करती है, और ये गई तो हमारी कई की कमाई कई बार समाप्त हो जाती है। इसलिए इसकी भी बहुत महीनता से चेकिंग करनी है। तो छठी बात ये है चेकिंग की, कि सुस्ती को कहाँ तक भगाया है, आलस्य पर कहाँ तक जीत प्राप्त की है, अलर्ट और एवर रेडी कहाँ तक रहते हैं, और 7वें दिन के लिए चेकिंग है संगम का समय बहुत अमूल्य है। बाबा बार बार इस पर हमारा ध्यान खिंचवाता है, इसको व्यर्थ नहीं करना, बहुत सा समय नष्ट जाता है किस बातों में, पर चिंतन पर दर्शन, इसने ऐसा किया वो ऐसे करता वहां ऐसे होता, बहुत सी बातें हैं जो समाचारों की लेन देन नहीं करनी चाहिए, वो भी समाचार सुन लेते सुना देते हैं, बाबा मना करता है। तो इसको इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा स्वचिंतन में कहां तक रहती हूँ, शुभ चिंतन में कहां तक रहती हूँ, स्वचिंतन अपने प्रति आत्मा अपना चिंतन करे, ज्ञान का चिंतन करे, बाबा का चिंतन करे, उसमें मगन रहे, या फिर शुभ चिंतन करे कि आत्मा का कैसे कल्याण हो, कैसे इनका भला हो। जैसे दादी के अंदर बहुत शुभ चिंतन चलता रहता, सदा ही चलता रहता, सबका कैसे भला हो, सबको संदेश मिल जाए बाबा का, इतना तूफान जैसे संकल्प ये आते हैं। और सब संकल्प नहीं है, केवल दो ही संकल्प, एक तरफ सोन्नति सबकी हो और दूसरा सबको बाबा का संदेश मिल जाए, कुछ न कुछ नई नई रोज प्रेरणाएं आती रहती है अंदर से। कल मुझे कहती है कि अभी अगस्त से लेकर के दिवाली तक कम से कम एक एक जोन, एक एक दो दो लाख को ये बाबा की जो छोटी चौपड़ी बनी ना, देखा है आप लोगों ने, एक रुपए की तीन मिल रही है, लिटरेचर में है, एक रुपए की तीन, बहुत अच्छा मैसेज उसके अंदर छपा हुआ है। अभी उसमें राखी का नया ऐड किया है, पहले नहीं था, पहले दादी की तरफ से संदेश था और अभी राखी का संदेश डाला है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का और राखी का, अभी छप रहा है, काफी संख्या में छपा है नीचे। दादी के अंदर बार बार आ रहा है कि अभी चारों तरफ से हर भाषा में छप जाइए और कम से कम तीन महीने में 18 लाख लोगों के हाथों में चौपड़ी जानी चाहिए, इतना संकल्प उमंग है। हर एक दे सकता है, एक रुपए के तीन बांटना कोई सहज, बहुत सहज है। इतने सारे ब्राह्मण हैं, अगर सब जुट जाएंगे तो कितना खर्चा है, पांच पांच रुपया, दस दस रुपया भी कोई खर्च कर दे तो लाख को दो लाख को एक जोन में देना कोई बड़ी बात नहीं। जब मैंने हिसाब लगाया, हमारे 11 जोन है और उस 11 जोन के अंदर एक एक जोन में कई जगह पांच सब जोन है, जैसे महाराष्ट्र में 5-6 सब जोन है, कर्नाटक में 5 सब जोन है, ईस्टर्न में 5 सब जोन है, तो कितने हो गए, 16-17 जोन हो गए, 18 जोन सब जोन मिला करके। और अगर ये सब मिलकर के सेवा करना शुरू करें, एक सब जोन और जोन 1 लाख लोगों को भी ये पुस्तक दे, तो 18 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को ये उसके हाथ में संदेश मिला। तो दादी कहती हाथ में दे जाकर के, ऐसे नहीं भेंट फेंक दिया बांट दिया, घर घर में जाकर के, और उसको पढ़ेगा तो कम से कम बाबा का कुछ परिचय तो मिलेगा, संदेश तो प्राप्त होगा, और जो अपने घराने के होंगे आ जाएंगे, अपने बाबा के बच्चे निकल आएंगे, तो 9 लाख की माला तैयार हो जाएगी। तो इतना उमंग है, इतनी शुभ भावना है, शुभ चिंतन है, इधर उधर की बातों में समय नहीं जा रहा है। हम लोगों का समय जो जाता है जब आपस में बैठते हैं, तो ये सातवें दिन का एक ऐसा सब्जेक्ट रखा है कि स्वचिंतन कितना समय किया और शुभ चिंतन में कितना रहे। समय हमारा नष्ट तो नहीं हुआ, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, जो बार बार हमारी दादियां कहती हैं, ये तीन पर काट दो, ये तीन पर है ना, इनको काटो, पर चिंतन करना है, पर दर्शन देखना भी नहीं बुरा दूसरों का, और पर मत के प्रभाव में नहीं आना, श्रीमत पर चलना, बस एक बाबा की मत, श्रीमत मिले ना सबको मुरली के अंदर, कितनी अच्छी अच्छी बाबा की मतें मिलती हैं, एक एक मत हमारे कल्याण के लिए है, तो श्रीमत पर हम सदा चलते रहे। तो हमारा समय बहुत अमूल्य है, संगम का एक एक पल इधर उधर की बातों में न जाए, ध्यान रखो कहीं पर भी कोई बातें ऐसी चलती हो, बाबा कहता ही अनोई, सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, हमारे काम की बात नहीं है, क्यों सुने, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ऐसे नहीं सुन लिया फिर हमारे अंदर आई बात फिर सुनाने के भी नहीं रहेंगे, हमने सुना तो दूसरे को सुनाएंगे, दूसरा तीसरे को सुनाएगा, तो क्या होगा, उससे वायुमंडल खराब हो जाएगा ना। और वायुमंडल अगर बना बनाया वायुमंडल, देखो कितना मधुबन का वायुमंडल शांत है, आज मैं योग में बैठा 7 बजे 7:30 बजे देखा कितनी साइलेंस, एक भी चू की भी आवाज नहीं थी पूरे घर में, इतने लोग हैं कम से कम 1000-1200, हॉस्पिटल घर मधुबन सब सेवाधारी, कितना है, 700-800 तो होगा ना कम से कम, इतने सब हो रहे हैं, सब योग भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं सब योग में बैठे थे, इतना साइलेंस का वायुमंडल, इतनी शांति, इसके प्रकंपन इसका वायुमंडल फैलेगा नहीं, कितनी आत्माओं का साक्षात्कार होता होगा, कितनी आत्माओं को शांति का दान मिलता होगा। ये बहुत गुप्त सेवा है, ये कहने की नहीं, बताने की नहीं है, लेकिन एक कितना अच्छा वायुमंडल जिसमें हमें बाबा ने रखा है, अगर हमारा शांत वायुमंडल का प्रभाव पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है, तो चारों ओर इसके वाइब्रेशन फैलते हैं, वो सेवा करते हैं। तो हम सब की जवाबदारी है कि इधर उधर कहीं भी किसी भी बातों में, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ में अपना समय न गंवाएं। जो ज्यादा बोलने वाला उनसे बातें करना बंद कर दे, बोलने दो उसको, चलो चाह इसका संस्कार है, मैं नहीं बोलूं उसके साथ, चुप रहो। एक चुप सौ भला बाबा कहते हैं, सब प्रकार की भलाई है उसमें। तो हम सब अगर यज्ञ के अंदर बाबा के घर में ये सेवा करना सीख जाएं, चुप रह करके, शांत में रह करके, शांति के सागर बाबा की याद में मगन रहे, मस्त रहे, तो ये हमारा समय सफल हो। ऐसे नहीं समय हम पास कर रहे हैं, कई लोग समय पास कर रहे हैं, पास ही नहीं होता, कुछ न कुछ भी टीवी देखेंगे, न्यूज सुनेंगे, इधर टाइम वेस्ट करेंगे, उधर करेंगे, टाइम पास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर बाबा की याद में रहने की आदत पड़ जाए, शरीरी रहने की आदत पड़ जाए, अच्छा अच्छा चिंतन करने की आदत पड़ जाए, तो ये टाइम हमारा सफल हो रहा है। टाइम सफल हो संगम का, जिसमें कल बाबा ने बहुत अच्छे शब्द दो दिए कि कमाल और कमाई, बैलेंस से दो चीजें हैं, एक कमाल हो रही है और दूसरी कमाई हो रही है। वो जो खेल करने वाले नट लोग होते हैं, रस्सी पर चलते हैं, बहुत बैलेंस है उनका शरीर का, बैलेंस संतुलन, रस्सी पर चलते हैं, एकाग्रता भंग नहीं होती, इधर उधर नहीं देखते हैं, एकाग्रता बहुत है। तो बाबा ने भी कहा कि कर्म योगी बनो लेकिन बैलेंस, ऐसे नहीं कर्म में गए तो योगी भूल गया, योग में लग गए तो कर्म ही भूल गए, सेवा ही छोड़ दिया। बैलेंस, हर चीज का बैलेंस, और उस बैलेंस से अगर हम चलते हैं, संतुलन है हमारा हर चीज में और साथ साथ ही एकाग्रता है, तो कमाई भी है और कमाल भी होगी। ऐसा कोई काम हो जाएगा, ऐसी सेवा हम कर सकेंगे जो सब कहेंगे वाह बहुत अच्छा किया। तो बाबा की सेवाएं करते हुए हमारी कमाई भी जमा हो और कमाल भी होती रहे, सब ध्यान रखना, टाइम वेस्ट न जाए, अनमोल घड़ियां हैं, खूब सेवा करो। लेकिन ऐसे नहीं पांच छह घंटा बाबा ने कहा सेवा करो तो पांच छह घंटा किया और फिर 24 घंटे और क्या किया, 22 घंटे क्या करेंगे, 6 घंटा अगर सेवा किया 22 घंटा क्या किया, 6 घंटा मान लो आज बाबा ने कहा ना 6 घंटा सेवा करो, करमाना सेवा करो, 22 घंटा नींद करना, घूमना, सैर करना, क्या करना, वेस्ट नहीं हो। ये ध्यान रखना है कि कर्मणा सेवा 6 घंटा 8 घंटे से ज्यादा कोई नहीं कर रहा है, यहाँ करता है कोई नहीं होता अगर चेक करो तो। और जब 8 घंटा 6 घंटा ही सेवा नहीं हो रही है तो बाकी घंटे कहाँ जा रहे हैं हमारे, अच्छे चिंतन में जाते हैं, योग में जाते हैं, अच्छे अच्छे विचारों में जाते हैं, अपनी उन्नति ज्ञान के चिंतन में जाते हैं। चेक करना चाहिए, यही चेकिंग है और क्या है, यही रजिस्टर रखना है, इसी से हमारा कैरेक्टर बनेगा। तो ये 7 बातें हम सभी सेवा केंद्रों पर भेजेंगे, दादी हमारी गुलजार दादी के पास भेजा है, पढ़ रही हैं, पास हो गया तो सब सेंटर्स पर ये चार्ट जाएगा, आपको भी मिलेगा सबको। लेकिन अभी से राखी तक हर एक समझे कि एक हफ्ता चेक किया फिर दोबारा उसमें कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई, दूसरे हफ्ते में 4 हफ्ते तक चेक करके फिर सब देना राखी पर। तो ऐसी प्लानिंग की है, बनाया गया है चार्ट, मिलेगा आप सबको, सेंटर्स पर भी जाएगा। तो सब अपना अपना रजिस्टर ऐसे रखें, तुम्हारा अच्छा चार्ट है, अच्छी स्थिति है, अच्छा कैरेक्टर है, तो क्या होगा, योग सहज लगेगा, योग में मेहनत नहीं लगेगी, निरंतर खुशी, हल्कापन, अच्छी स्थिति का अनुभव होता रहेगा। तो हम सब बाबा के घर में किस लिए आए हैं, सेवा करने, सिर्फ सेवा के साथ साथ अपनी अच्छी स्थिति बनाने आए हैं, अच्छी स्थिति बना करके जाना है, ऐसे नहीं आए हैं सेवा कर लिया चलो ठीक है। लेकिन हमारी अच्छी स्थिति बन जाए, जब चाहे हमारा योग लग जाए, मन एकाग्र हो जाए, बुद्धि का भटकना बंद हो जाए, कोई भी पेपर आए हम उसको पार कर लें, पास हो जाए, हलचल में ना है, ये है अच्छी स्थिति। तो ऐसी अच्छी स्थिति बनाने का बाबा के घर से वरदान, गिफ्ट लेकर के जाना। ओम शांति।